ايوه كفاءة وسلام. فاضل ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوه ذلك لمن يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا عزيزا في الوقت. لو كنا فعل عاشدين بس رئيس بعد سبو خلى بضاورة ايه عدد علي رضي الله تعالى عنهم كي أنحى عن كي بارے میں ہم بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں. چوتھے خلیفہ راشد نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف فرما جانے کے بعد تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے دور خلافت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو آخری بات کسی کو اگر یاد ہو کہ ہم نے کیا پڑھی تھی جی رحمت کے despite their faults, despite their mistakes, errors. Okay? So errors جو ہیں, mistakes جو ہیں, غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جاتی. ٹھیک ہے, even the best of the best. ٹھیک ہے, ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ no one is perfect, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ perfect. ٹھیک ہے, لیکن جو اوور آل نیک لوگ ہوتے ہیں, اچھے صفات والے ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں, خصوصاً جو صحابہ کرام ہوتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا, قربانیاں دیں, اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام کے لیے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی بحیثیت انسان کے, ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی, کوئی ججمنٹل غلطی ہو گئی, کوئی فیصلہ انہوں نے ایسے کرنے کے بجائے ایسے کر لیا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں ان سے ان سے نفرت, حد کے ساتھ نفرت تو بہت دور کی بات, ہم ان کے اوپر ان کو کریٹیسائز بھی نہیں کر سکتے کہ کیوں کر, کریٹیسائز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیوں کری ایسی غلطی, نہیں کرنی چاہیے تھی ایسی غلطی, انہوں نے غلطی کری نا اس وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہو گیا, یہ کہتے ہیں کریٹیسائز کر. ٹھیک ہے, کریٹیسائز ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں کری, کچھ نہیں کیا, بس سب ٹھیک تھا, 100% پرفیکٹ تھا, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے علماء نے ایسے نہیں کیا, ہمارے مشائخ نے ایسے نہیں کیا, اکابرین نے ایسے نہیں کیا, تو ہم کیوں ایسا کام کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو الگ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا, تنقید کرنا, برا بھلا کہنا, الزام دینا, یہ گندی بات ہے, یہ غلط بات ہے, یہ نیکوں کے ساتھ کسی بھی نیک کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور بڑے لوگ اکابر علماء مشائخ صحابہ کرام ان کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں, حتیٰ کہ بڑے اکابرین جن کی کتاب ہم استعمال بھی کرتے ہیں اپنی کلاس کے اندر, حضرت مولانا ادریس اندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی زبردست اچھی بات لکھی. ٹھیک ہے, وہ کیا لکھی کہ یہ جو ایک جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا نام کیا تھا, اس والی جنگ کا نام آپ نے یاد کرا کے نہیں آپ بتا رہے تھے محمد عمر, اچھا آپ بتا رہے تھے جنگ صفین, سواد سے, سواد فا یا نون صفین. ٹھیک ہے, یہ صفین کے مقام پر ہوئی تھی, اس وجہ سے جنگ صفین تھی. وہ جو جنگ جمل تھی نا وہ اس سے پہلے ہوئی تھی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھی, بلکہ وہ جنگ ہوئی تھی حضرت ان کے ساتھ ہوئی تھی, جو دوسری طرف کے لوگ کون تھے اس جنگ کے اندر, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا, یہ تین اکابر بڑے مفتی حضرات ہیں, یعنی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تو اشرائے مبشرہ میں سے تھے, اور یہ امت کی ماں تھیں اور فقیہہ تھیں, ایسی بھی دوسری امہات کی طرح نہیں کیونکہ ماشاء اللہ عبادت گزار تھی, نیک صدقہ خیرات کرتی تھی, بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو انہا جو ہے ان کی خصوصیت کیا تھی, یہ فقیہہ تھیں, یعنی علماء میں بھی جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے نا یہ ان میں سے تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, تو وہ جنگ جمل تھی جو کہ لوگوں کے ساتھ علی رضا کی اور دوسری جو ہے جنگ صفین تھی. ٹھیک ہے, 2023 کے اندر بھی ہم تو نے ایک بڑی اچھی اور بڑی پیاری بات لکھی, کیونکہ ہم نے اپنے حضرت جی سے سنی تھی, لیکن وہ دوسرے کانٹیکس میں سنی. ٹھیک ہے, دوسرے کانٹیکس میں کیا سنی تھی کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا, جوان, ٹھیک ہے, تو ان کے اندر کیا چیز زیادہ ہوتی ہے, اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا چیز زیادہ ہوتی ہے یار, ہاں, جو نوجوان ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں ان میں جوش زیادہ ہوتا ہے, اور جو بوڑھے ہوتے ہیں یا سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوش زیادہ ہوتا ہے. نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ہوش غالب تھا, ٹھیک ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے طرف کے صحابہ کے اندر جوش غالب تھا. جوش کس بات کا غالب تھا؟ وہ ایسا نہیں کوئی نوجوانی والا جوش نہیں, بلکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو اثر تھا نا ان کے اوپر, اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک جوش تھا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, یہ امت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے, اس کو جو ہے نا وہ امیڈیٹلی ہم نے کرپٹ کرنا ہے, فوراً سے پیشتر اس دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ والا کام ہم نے سب سے پہلے کرنا, عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو جو ہے وہ ہم نے گرفتار کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دینی ہے, تاکہ بالکل جو ہے نا وہ سارا سارا فتنہ ختم ہو. ٹھیک ہے, اور علی تعالیٰ کی میں یہ کر ہی نہیں سکتا, اٹس ناٹ ایون پاسبل فور, ہے نا, اتنا کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, اتنے جو ہے وہ فسادی ہے اور ایسے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں, میرے لیے چیز ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو فرمایا کہ وہ ہوش غالب تھا ان کے اوپر, ان کے اوپر جوش غالب تھا, اور دونوں چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ضروری ہوتی ہیں, جیسے کہ نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش ملتا ہے تب ہی کام ہوتا ہے, ورنہ کام ہی نہیں ہو, ورنہ کام ہی نہیں ہو سکتا, ہے نا, وہ ہوش ہوش میں رہیں گے تو کام کب ہوگا بھائی, اور یہ جوش جوش میں رہیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, تو دونوں جب ملتے ہیں تب کام ہوتا ہے, تو یہ دونوں کوئی بری چیزیں نہیں ہے, دونوں اچھی چیزیں. اچھا, تو پچھلی کلاس میں ہم نے جنگ جمل کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا, اور اس میں پھر یہ بھی بتایا تھا نا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل کے اندر ہو گئی تھی, تو وہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, تو ہوا یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ, یہ تو آپ کو بتایا تھا کلاس کے اندر, کہ انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ کے قریب جا کر کے ان سے کہا, زبیر تمہیں وہ یاد نہیں ہے وہ دن جب ایک بہت اچھے خوشگوار بوٹ میں نبی علیہ السلام نے تم سے فرمایا تھا کہ تم ایک دن علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوگا, ٹھیک ہے, علی حق پر ہوگا اور تم اس کے خلاف غلط لڑ رہے ہو گے, تو زبیر تو ان کو بات یاد آ گئی اور وہ ایک دم جو ہے نا وہ رشکر سے ہٹے, انہوں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کری کہ بھائی ختم کرو یہ غلط غلط ہو رہا ہوں, لیکن کسی نے وہ جنگ میں جو لگے ہوتے ہیں نا اس وقت, یعنی جدھر سے تیر آ رہا ہے ادھر سے تلوار آ رہی ہے ادھر سے نیزہ آ رہا ہے خون بہ رہا ہے لوگوں کا, نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس وقت نا, تو کسی نے ان کی بات نہیں سمجھی, طلحہ نے بات مان لی لیکن باقی لوگوں نے ان کی بات نہیں سمجھی, تو یہ خود ہی باہر نکل گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف جانا شروع ہو گئے, وہاں پہ ایک مقام کے اوپر وہ ٹھہرے, آرام کیا, سو گئے, ایک بندہ جو تھا نا جو کہ علی رضوان کے لشکر کا تھا, سمجھتا تھا کہ میں علی رضوان کا بڑا وفادار ہوں, وہ آیا اور اس بدبخت نے جو ہے وہ زبیر رضوان کو شہید کر دیا, اور ان کا باقاعدہ سر لے کر کے علی رضوان کے پاس آیا اور پیغام بھیجا باہر خیمے سے کہ میں آپ کے دشمن کو قتل کر کے لے آیا ہوں, کہا کہ اس سے کہو وہ جہنم ہے, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سنا ہے کہ زبیر کا قاتل جہنم, جہنم والا ہے, علیہ السلام نے اس کو بالکل لفٹ نہیں کرائی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات یاد آئی کہ ہاں واقعی غلط کر رہے ہیں, طلحہ رضی اللہ عنہ بھی الگ ہو گئے, لیکن وہ ایک جگہ پہ جب جا رہے تھے الگ ہو کر کے تو ان کو تیر آ کر کے لگا, اور اسی تیر کے زخم کی وجہ سے ان کی بھی شہادت ہو گئی, یہ دونوں اکابر اور بشرا صحابہ جو ہے جنگ جمل کے اندر شہید ہو گئے. جنگ صفین کے اندر کیا ہوا کہ یہی تھا کہ بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی جوش میں, انہوں نے کہا نہیں عثمان کے قاتل ہوں گے جب تک بدلہ نہیں دیا جائے گا رضی اللہ عنہ, اس وقت تک ہم بیعت نہیں کریں گے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر, تو وہ پھر علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بغاوت ہے, جب مدینہ منورہ کے اندر اکثر صحابہ نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے اور مجھے خلیفہ نامزد کر دیا, شروع میں تو وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے خلیفہ بننا, لیکن لوگوں نے بھائی خلافت نہیں ہوگی ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو فتنہ اور بڑھ جائے گا, اسی وجہ سے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کیوں ایسے ایسے کر کے جلدی سے ہوئی تھی, کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ اگر हमारे ऊपर कोई नहीं होगा तो फिर शैतान हमारे पास जाएगा और शैतान जो है सारा जो है ना वो पानी फेर देगा, सारा काम खराब कर देगा। फौरन खिलाफत का इंतजाम किया, भगत सिंह की खिलाफत ऐसी हुई थी, उमर रजान की खिलाफत भी ऐसे ही हुई कि बस वो शहीद हो रहे हैं, उनका जिस्म जो है वो उसमें से खून बह रहा है और खत्म, लेकिन खिलाफत का तो ये 6 लोग हैं कि आप उसमें जल्दी से डिसाइड करें खिलाफत कौन कौन खलीफा बने। ठीक है, तो उस्मान रजान खलीफा बनाए गए। उसी तरीके से अली रजान के मामले में भी ऐसे ही था कि वो खुद तो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सहाबा आए, वो बाजार में जा रहे थे और उनको आकर के पकड़ा कि नहीं अली, तो हम उम्मत को बगैर लीडर के नहीं छोड़ सकते, तो आपको हम खलीफा बनाते हैं, आप बने। और यानी ऊपर की जो शफकत होती है, ऊपर की जो अथॉरिटी होती है, उसके बगैर फितना ही फितना होता है। ठीक है, ये तो नेक लोग थे, ये तो अल्लाह वाले लोग। इवन अगर कोई काफिर और गुनाहगार इंसान भी अगर ऑर्डर मेंटेन करता है ना मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क के अंदर फितना नहीं होता, उस मुल्क के अंदर फितना नहीं होता। हालांकि ऊपर जो है वो गुनाहगार इंसान है, उसने गुनाह वैसे फैलाए हुए, लेकिन पतलो भारत गरीब मुल्क के अंदर नहीं होगी। मुल्क के अंदर क्राइम बिल्कुल फैला हुआ, जो था ना, जो ये उसको मार रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसे ये कर रहा है, इसका किसी की प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, किसी की इज्जत सेफ नहीं है, किसी का माल सेफ नहीं है, किसी की जान सेफ नहीं है। ठीक है, इवन अगर गुनाहगार शख्स भी ऊपर लीडर होता है तो भी नीचे ऑर्डर मेंटेन रहता है। इसकी तो बड़ी बड़ी मिसालें अभी रिसेंटली दुनिया ने देखी, लीबिया की आपने मिसाल देखी, लीबिया का जो लीडर था एक आदमी नहीं था, बहुत बुरा आदमी था वो, लेकिन उसने एक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ था मुल्क के अंदर। फितना फसाद वैसा नहीं होता था, इन बदबख्तों ने काफिरों ने आकर के उसको मार के खत्म कर दिया। राइट, अब लीबिया जो है वो कोई कोई महफूज नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। उसी तरह इराक में भी ऐसे ही हुआ, वहां पे भी कोई लीडर लेने थोड़ी था वो। राइट, उल्टे सीधी हरकतें, उल्टे बेहयाई और बेपर्दगी और सारा 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 मसला चल रहा था, लेकिन ऑर्डर मेंटेन था। इन बदबख्तों ने उसको भी हटा दिया, ओ बस सब कोई महफूज नहीं उसके बाद। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरे मुल्कों के अंदर भी कोशिश करते रहते हैं कि उसके लिए तो के उसके लिए तो के उसके लिए ऊपर वाले जो भी है उसको धोखे दे दे करके, और इसके बारे में जो है ना वो प्रोपेगेंडा बना बना करके, इसने तो ये किया हुआ है, इसने वो किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, हटाओ उसको हटाओ उसको हटाओ उसको। वो कोई खैरख्वाही नहीं कर रहे होते, वो हटा करके दरअसल मजीद फसाद क्रिएट कर रहे होते, कोई खैरख्वाही नहीं कर रहे होते। यही मामला हमारे मुल्क का भी है, हमारे मुल्क में भी कोई नेक लोग नहीं बैठे हुए होकर, परहेजगार लोगों पर नहीं बैठे हुए, लेकिन अभी भी एक सिलसिला चल रहा है, कुछ है, अदालत है, ये है वो है, कुछ ना कुछ अगर चलिए बहुत बुरा मामला है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर। और ये बेवकूफ लोग ऊपर से तो काफिर चाहते ही हैं कि फसाद इधर भी वैसे क्रिएट हो, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे कुछ वो इराक में हुआ, जैसे कि मुल्कों के अंदर उन्होंने किया। ठीक है, हमारे मुल्क में भी ये कोशिश कर रहे हैं, और बेवकूफ नीचे वाले हमारे जैसे जो बेवकूफ होते हैं वो, हाँ बिल्कुल सही है, हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ इनको, वो भी उनके हाँ में हाँ मिला करके, हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ इनको। तो भाई ये हट गए ना तो इनके बाद इनसे भी बुरे आएंगे, सच्ची बात ये भी कोई नेक नहीं है, लेकिन ये हट गए तो इनसे भी ज्यादा बुरे आएंगे, और किसी की जान मान इज्जत आबरू किसी की महफूज नहीं रहे। इस वजह से हमारे उलमा इनके खिलाफ नई तहरीक बना, नई तहरीक चला। ठीक है, लेकिन ये नौजवान शदुमरे ये जो है उड़ा तहरीक के चक्कर में रहते हैं, मारो भगाओ उसको खत्म करो, ये तो हमारे बिल्कुल इसके खिलाफ है, बिल्कुल इसके खिलाफ, इसी वजह से इसके खिलाफ है। तो अली रतान जो है वो खलीफा इस तरीके से बने थे ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे उम्मत के अंदर। ठीक है, लेकिन उस्मान गनी को, उस्मान गनी रतान के कातिलों का मसला ये सब कुछ जो है वो चल रहा था, तो उन्होंने बैत नहीं करी थी जब मौजूद रहता, उन्होंने तो अली रतान ने कहा कि भाई ये फिर बगावत है। ठीक है, मुमलिकत के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ ये एक बगावत है, और बागी के खिलाफ तो कुरान मजीद में हुक्म है कि भाई उसके खिलाफ जो है वो कताल किया जा सकता है, लड़ाई की जा सकती है, तो वो अपना बाकायदा लश्कर लेकर के इनके खिलाफ लड़ाई के लिए आए। ठीक है, तो उधर से जो है वो मुआविया रतान जो है वो भी अपना लश्कर लेकर, उन्होंने तो बैत नहीं करी रतान के हाथ के ऊपर। ठीक है, अभी मैं क्यों तो मैं क्यों जो है वो, मैंने तो बैत भी नहीं करी, बैत करता तो फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैंने तो बैत ही नहीं करी है, तो वो भी अपना लश्कर लेकर के आए, और इस तरीके से जो है वो बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई, और इसके अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा शरीफ, बहुत ज्यादा, ठीक है, 70,000 किताब में लिखा हुआ, 70,000 मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस वैली, ठीक है, और ये एक महीने से ज्यादा जो है चलती है, हत्ता के दोनों साइड वाले जो है ना वो तंग आ गए बड़ा करके, और ये बात करने लगे जैसे हजरत अमर इब्न आस ने भी फरमाया कि भाई ये अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे ना तो हम तो फिना हो जाएंगे, और रोमी जो है वो तो पहले इंतजार में बैठे हुए हैं, वो अटैक करेंगे और हम लोगों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, सामान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो वी हैव टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। तो इस तरह की आवाजें उठनी शुरू हुई, ठीक है, मुआविया के लश्कर में, तो भाई खत्म करो खत्म करो, ये वी कैन नॉट सस्टेन दिस, ना ये फाइटिंग हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो है ना वो दिल में आया किसी के ये आइडिया, हजरत मुआविया रजान के दिल में आया, ये हजरत अमर इब्न आस के, अमर इब्न आस जो कि मुआविया रजान के सेकेंड इन कमांड थे, ठीक है, उनके राइट हैंड मैन थे, बहुत बड़े सहाबी थे वो भी अमर इब्न आस, तो उन्होंने ये तदबीर करी कि उन्होंने 5 लोगों से कहा कि तुम लोग जो है ना वो अपने नेजों के ऊपर कुरान मजीद, कुछ उनके पास कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद था, ठीक है, उनको कहा कि कुरान मजीद का जो नुस्खा यानी जो बुक है ना वो नेजों के ऊपर लगा करके किसी तरह एक शेप करके या कुछ इस तरह से करके उसको लेकर के तुम मैदान के अंदर आओ, ठीक है, और ये कहो कि भाई हमारा और तुम्हारा फैसला जो है ना ये कुरान करे, ठीक है, कुरान मजीद से हम इसका फैसला करेंगे, हम लड़ाई करके फैसला नहीं कर सकते, इससे बड़ा नुकसान हो, ठीक है, तो कुरान फैसला करेगा, कुरान फैसला करेगा। तो अब जब ये 5 लोग कुरान मजीद इस तरह से नेजों के ऊपर ऊंचा करके ताकि सबको नजर आए कि हम कुरान मजीद लेकर के आ रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने देखा ना, तो उनमें भी जिन लोगों के पास कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद थे, ठीक है, तो उन्होंने भी फिर अपने नेजों के ऊपर कुरान मजीद को लगाया और वो भी आ गए, ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे कुर्रा मौजूद थे, हुफाज़े कराम मौजूद थे, ठीक है, उस जमाने में हाफिज तो बहुत ज्यादा होते थे लेकिन जो ज्यादा कमांड जिनको होते उनको कुर्रा कहते थे, कुरान मजीद के कुर्रा, तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको भी ये याद आ गया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, कि क्या आपने देखा ऐसे लोगों को कि जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया है इल्म का, ठीक है ना, यानी कुरान मजीद में से इल्म का हिस्सा दिया गया है जिन लोगों को, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा कि यदरूना इला किताबिल्लाह लियहकुमा बैनहुम, कि उनको किताबुल्लाह की तरफ बुलाया जाता है कि ताकि किताबुल्लाह जो है वो उनके दरमियान फैसला कर दे, ठीक है ना, डिसाइड कर दे कि भाई हाँ कोई कौन सही है कौन बात है कौन गलत पर है, किताबुल्लाह फैसला कर देते हैं, किताबुल्लाह में ऐसी चीजें मौजूद है, आयात मौजूद है, ठीक है, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक फरीक जो होता है ना, एक ग्रुप जो होता है वो पीठ फेर लेता है, वो बात को नहीं मानता कि किताबुल्लाह जो है हमारे दरमियान फैसला करेगी, वो और ये जो फरीस है ना जो कि इस बात से इनकार करता है कि किताबुल्लाह से हम फैसला करेंगे, ये लोग तो एयाज करने वाले लोग, ये लोग तो पीठ फेरने वाले लोग हैं, वो तो बहुत बुरी बात है कि भाई अल्लाह की किताब से पीठ फेरने वाले आप बन जाए, तो उन कुरान ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही है, हम किताबुल्लाह से फैसला करेंगे, हम लड़ाई के जरिए से फैसला नहीं कर सकते आपसे, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से क्या हुआ कि Everyone decided कि नहीं, we have to stop this war, ठीक है ना, और अब जो है ना वो हम किताबुल्लाह के जरिए फैसला करेंगे। अब किताबुल्लाह जो है वो आपको पता है कि क्या है, किताबुल्लाह है ये एक बुक है, ये कोई चलता फिरता इंसान तो है नहीं कि ये बोले आपको, है ना, कुरान मजीद का मतलब जो है वो बोलना शुरू हो जाए कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है, ठीक है, तो किताबुल्लाह से फैसला करने का मतलब क्या है, किताबुल्लाह से फैसले का करने का मतलब क्या है कि भाई जो रिजालुल्लाह है, राइट, जो किताबुल्लाह के आलिम हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो किताबुल्लाह को पढ़ेंगे, उसमें से हुक्म जो है वो ड्राइव करेंगे और उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे, है कि नहीं, राइट, बोलेगा कौन, किताबुल्लाह तो नहीं बोलती ना, इंसान बोलता है ना भाई, ठीक है, तो असल में तो फैसला जो है वो किताबुल्लाह की रोशनी में इंसानों ने करना है, ऐसे ही है ना, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, इंसानों ने फैसला करना है, लेकिन किताबुल्लाह की तालीमात की रोशनी में फैसला करना है, ठीक है ना, तो सारे जो अकल वाले थे समझ वाले थे वो तो बात को समझ गए, अभी ऐसे ही करना, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब जो है ना हकम मुकर्रर करते हैं, हकम यानी फैसला करने वाला जज, ठीक है ना। हम इस साइड से भी एक जज मुकर्रर करते हैं, इस साइड से भी एक जज मुकर्रर करते हैं कि जो कि दोनों किताबुल्लाह को समझने वाले लोग हों, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो जज मुकर्रर किए गए। एक जो जज थे हजरत अली रतानी की तरफ से, वो हजरत अबू मूसा अली रजी अल्लाह, वो बहुत बड़े सहाबी थे अबू मूसा था, उनको इस साइड से हकम मुकर्रर किया गया, ठीक है, नॉमिनेट किया गया। और इस साइड से हजरत ये मुआविया रजान से की तरफ से जो है वो हजरत अमर इब्ने आस रजान को हकम मुकर्रर किया, वो भी बड़े जलील कदर साहबी थे, ठीक है। याद है ना सीरत नबी में उन्होंने पढ़ा था कि हजरत खालिद बिन वलीद रजान और अमर इब्ने आस रजान और तीसरे कौन थे, वो तीनों साथ आकर के मुसलमान हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही इन लोगों को लश्कर कबीर बना दिया है, खालिद बिन वलीद को लश्कर कबीर, हाँ उस्मान बिन मफ़ऊल मफ़ऊल नज़रत आने का तीसरे थे, उनका नाम भी उस्मान ही था लेकिन उस्मान वाली अदा नहीं थे। तो इतने ये टैलेंटेड लोग थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही इनको फौज का सरबरा बना दिया, ठीक है ना। अमर बिन आस को बना दिया, जनू बना दिया और खालिद बिन को बना दिया, तो बड़े जलील कदर साहबी थे। तो इधर से ये हकम अबू मूसा अशरी था, इधर से अमर बिन आस जो है हकम मुकर्रर किए गए। और फिर इन लोगों की आपस में नेगोशिएशन शुरू हुई और फिर एक बात तय हुई। अच्छा, ये जो आपस में सुलह की बातें शुरू हो गई ना, तो अब इसकी खबरें जो है जब दूसरे मुसलमानों को पहुंची तो लोग बहुत खुश हुए। कुछ मुसलमान ऐसे थे बड़े बड़े सहाबा वैसे, जिन्होंने कहा था कि ना भाई हम इनके साइड पे होंगे ना हम इनके साइड पे होंगे, उन्होंने बाकायदा अपनी तलवारों को तोड़ दिया कि हम इस फाइटिंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। वो लोग बिल्कुल जो है ना वो गोशा नशीनी में चले गए, अलग हो गए थे वो, ठीक है। तो उनमें वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला का नाम है, ये किसी फाइटिंग का हिस्सा नहीं बना। हजरत साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा में से ये भी थे, ये भी किसी फाइटिंग का हिस्सा नहीं। और हजरत मुग़ीरा इब्ने शौबा रज़ी अल्लाह तआला, ये भी किसी फाइटिंग का हिस्सा नहीं। ये तीनों हजरात जो है ना वो अलग हो गए थे, लेकिन जैसे ही इनको ये खबर मिली कि अब मुसलमान आपस में अफहाम और तफहीम की बातें कर रहे हैं और है ना सुलह सफाई की बात, तीनों के तीनों आ गए, ठीक है ना। वो तो इंतजार कर रहे थे कि भाई मौका मिले हम वापस आए, कोई ऐसे कोई नफरत में थोड़ी हो गई थी ना, मतलब कोई बुरा भला कोई थोड़ी कहना शुरू हो गया था, ठीक है। उनका अपना अपना जजमेंट था, वी नो एग्री विद देयर जजमेंट, तो हम अलग हो जाते हैं। तो अब ये तीनों हजरात भी आ गए, तो मुग़ीरा बिन शोबा रज़ान जो है उन्होंने अपना ख्याल जो है ना वो पेश किया कि दोनों हकम जो थे उनसे अलग अलग मुलाकात की और उनसे डिस्कशन वगैरह की। बहरहाल तो इससे जो है ना जो लोगों ने नतीजा निकाला उससे एज सच कोई इमीडिएटली तो मामला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अलहमदुल्ला मामला एक तरह से सॉल्व हो भी गया, वो तफसील में वो भी नहीं जा रहे। लेकिन इस वक्त एक बहुत अहम बात करके हम आपको मुकम्मल करना चाह रहे हैं, वो ये है कि किताबुल्लाह को हकम बनाया, नेजों के ऊपर अल्लाह की किताब लगा करके किताबुल्लाह को हकम बनाया। लेकिन किताबुल्लाह हकम बनने का मतलब क्या है कि उसने कोई बोलना कोई थोड़ी है कुछ, तो इंसानों को हकम बनाना पड़ा क्योंकि इंसान इल्म रखते हैं किताबुल्लाह का, रिजालुल्लाह उन लोगों को कहते हैं। अब जो है ना कुछ लोग जो थे अली रतान के लश्कर के अंदर, उन्होंने कहा नहीं ये तो हम नहीं मानते, ये आप क्या कर रहे हैं, इंसान हकम बनेंगे इंसान कैसे हकम बन सकते हैं, हकम तो अल्लाह ताला है, हुक्म तो अल्लाह ताला का है, ठीक है। ये आपने जो है वो अबू मूसा अशरी और अपने अपने अमर इब्ने आस इनको कैसे हकम बना दिया, ये तो आपने जो है ना वो नऊज बिल्ला शिरक कर दिया है, आपने कुफर कर, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहना शुरू कर। और ये कह करके वो अलग हो गए लश्कर से। इन लोगों को क्या कहा जाता है, इनको खारिजी कहा जाता है, खवारिज उसकी जमा है, ये खारिजी या जमा उसकी है खवारिज, ठीक है, खारिजाइट्स इनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब ये जो है ना वो इस बुनियाद पर, यानी एकदम बेवकूफी की बात है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस, लेकिन नॉनसेंस की बुनियाद पर ही चर्चा होती है, वो अलग हो गए। अब उन्होंने जो है ना वो फितना लोगों को पकड़ते थे, कहते थे तुम हमारी बात से इत्तेफाक करते हो कि नहीं करते हो, कि जिसने जो है वो इंसान को हकम बना दिया वो काफिर हो गया, तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर वो बेचारा बंदा जो कि हाथ आया था वो कहता था कि नहीं मैं नहीं मानता, उसको खत्म करते थे, ठीक है, और जो मानता था उसको छोड़ देते थे, ठीक है। ऐसे सर्दबाज किस्म के ये लोग थे। तो अब अली हजारों को जब इसकी खबर मिली ना कि भाई ये तो एक टोला मेरे ही ग्रुप में से निकल करके खवारिज बन गया और लोगों को उसने कत्ल करना शुरू कर दिया इस बेवकूफी की बुनियाद पर, तो अली हजारों ने उस बात को ज्यादा अहम समझा कि भाई मुआविया हजारों से तो बाद में देखेंगे, इनसे पहले लड़ने की जरूरत है, इनको खत्म करने की जरूरत है। तो अली हजारों ने बाकायदा अपना लश्कर जो है वो इनके खिलाफ तैयार किया। ये जो लोग थे ना इनकी तादाद कहीं पे तो 8,000 लिखी हुई है, लेकिन ज्यादा जो हमने सुना है वो है 12,000 लोग, 12,000 के लोग, ठीक है। तो अली रजानों ने पहले तो इनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी कि भाई इनको समझाएं यार तुम ये किस किस्म की बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, अल्लाह का वही बात जो हम बार बार समझाते हैं, अल्लाह की आवाज भी थोड़ी आती है कि अल्लाह ताला फैसला करेंगे, ठीक है। वो तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज आती है ना सहाबा के पास, उसी तरीके से किताबुल्लाह के अंदर से कोई आवाज भी थोड़ी निकलती है, वो तो रिजालुल्लाह किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करेंगे, इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझना। लेकिन इनके दिल स्याह हो गए, ठीक है ना, ये अपनी नफरत बोगत और अपने आप को अपने तकबर की वजह से और अली रज़ियल्लाहु की दुश्मनी, ठीक है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वालों अली कितना बड़ा मुकाम में रहता, उनके बारे में जब दिल में ऐसी नफरत आ जाए कि उनको नाउज बिल्ला काफिर कहना शुरू हो, ये मामूली गुनाह नहीं है, ये मामूली गुनाह नहीं है, इतना बड़ा गुनाह है कि इनके दिल बिल्कुल स्याह हो गए, सख्त हो गए, असद कुलूब हो। अब जब सख्त हो जाता है ना किसी का दिल, उसको कोई एक्सप्लेनेशन, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई दलाइल, अब उनको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। इनका भी यही मामला हो गया। तो कोशिश बड़ी की गई लेकिन इन लोगों ने मान के नहीं, ठीक है। तो अली अदानों ने बिलाफिर इनके साथ जो है वो लड़ाई का ही फैसला किया। अली अदानों ने अबू अय्यूब अंसारी अदान को भी इनके पास भेजा, कैस बिन उबादा अदान को भी इनके पास भेजा कि भी बात इनको समझाने की कोशिश कर, ठीक है। लेकिन इनके जो बड़े थे इन्होंने तो बिल्कुल कहा, हाँ अलबत्त यह ने कहीं और पढ़ा था, और हजरत खालिद यूके में होते थे, इनके अंदर हो गया अभी
डॉक्टर खालिद
डॉक्टर साहिब में हो गए, ठीक है। वो एक दफा शिकागो आए थे, तो हमारे जो टीचर साहब थे वो हमें लेकर उनके पास पहुंच गए, तो वो माशाल्लाह बैठे हुए हैं, और दो ही लोग थे, तीन तीन लोग थे जो वहाँ पे, तो वो बताना शुरू हो गया, फिर ये इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू हो गया, जंगे सिफीन वगैरह के ऊपर। तो उनसे मैंने पहली दफा ये बात सुनी थी कि उन्होंने जो है ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को खवारिज के पास भेजा, ठीक है, और उनसे ये कहा कि खवारिज से जा करके तुम बात करो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, लेकिन तुम ना उनके सामने कुरान की दलील ना रखना, ठीक है ना, उनके ये बात समझ में, उनके सामने तुम सुन्नत की दलील रख, सुन्नत को बतौर दलील रख, ठीक है। ये देखो कुरान की समझ तो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए समय मिलती है ना, ये तो नहीं कि हम अपनी अकल से कुरान को समझे और उनको समझ दें, तो भाई हमें तो सुन्नत को फॉलो करना है ना। तो अब्बास रतान इब्ने अब्बास रतान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रतान उन्होंने जाकर के जो उन लोगों से बात करी ना, तो उनमें से काफी लोगों की ये वाली बात समझ में आ गई और वो खवारिज से अलग हो, ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रतान को कुछ कामयाबी हासिल हुई, लेकिन बाकी लोग डटे रहे ना अपने मौकफ के ऊपर ऊपर, तो फिर उनके साथ अली रतान ने बाकायदा जिहाद किया, और उनका जो लीडर था अब्दुल्ला बिन वहाब रासबी था, तो उसके साथ लड़ाई हुई, और शुरू में तो 12,000 थे या 8,000 थे, बाकी जो है ना वो खिसकना शुरू हो गए, खिसकना शुरू हो गए, और इसके पास सिर्फ 4,000 लोग हैं, और 4,000 ने जो है ना वो टिल द लास्ट मोमेंट अली अजान के साथ लड़ाई करी, लेकिन सारे के सारे 4,000 फिर आखिर कतल हुए, अली अजान की तरफ जो है वो सिर्फ 10-12 लोग जो है वो शहीद हुए बाकी। लेकिन 4,000 में ये तो मारे गए ना सारे के सारे, लेकिन जो खिसक गए ना वहां से जान बचा के, तो उनमें जो है ना वो लिखा है किताबों में कि 10-12 लोग रह गए, बच गए, और ये जो है ना फिर वही गुरिला वॉरफेयर, क्योंकि अब इनके पास फिजिकल तो थी नहीं, तो ये फिर साजिशें करना शुरू हो, ठीक है। तो इन 10 लोगों ने फिर हज के मौके के ऊपर इकट्ठे हुए, और इन्होंने आपस में प्लान किया कि भाई ये जो लोग है ना अली रज़ियल्लाहु और मुआविया रज़ियल्लाहु और अमर इब्ने आस, ये फितने की जड़ है, इनकी वजह से सारी लड़ाइयां हो रही हैं। तो इनको हम मार देंगे ना, कत्ल कर देंगे तो इस्लाम बच जाएगा, ऐसे शैतान को गुमराह कर, ठीक है ना, इस्लाम के नाम के ऊपर सहाबा को कत्ल करने की साजिश कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया कि हम में से तीन लोग जो है ना वो इन तीनों को कत्ल करने के लिए रवाना हो, वो तीन जो है वो तैयार भी हो गए। उनमें से एक जो था उसका जो नाम लिखा है वो इब्ने मलजम के नाम से मशहूर है, अब्दुल रहमान बिन मलजम, ठीक है। अब्दुल रहमान बिन मलजम ने कहा कि मैं तो अली को कत्ल कर रहा हूँ रजी अल्लाह तआला, ठीक है। और दूसरा था नजाल, उसने कहा कि मैं मुआविया रजी अल्लाह तआला को कत्ल कर रहा हूँ। और तीसरा था अब्दुल्ला, उसने कहा कि मैं अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला को कत्ल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तीनों जो है ना वो रवाना हुए और हर हर जगह पे पहुंचे जहाँ पे अली रहते थे, जहाँ पे ये, ठीक। और इन्होंने तय किया हुआ था कि 17 रमजान मुबारक की फजर में हम जाकर के तीनों पर अटैक करेंगे, बिल्कुल साइमल्टेनियस, ठीक है ना। साइमल्टेनियस क्यों, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक को कत्ल करने के बाद जब खबर फैलेगी तो दूसरे लोग जो अपने लिए स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह का इंतजाम करेंगे, हिफाजी तदाबीर करेंगे, हमें ऐसे लोग कत्ल कर रहे हैं, तो वो एक साथ करेंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा और तीन हो जाएगा कत्ल हो जाएंगे एक साथ, हमारा मसला मकसद हल हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो अब्दुल रहमान बिन मलजम जो है ये फजर की नमाज के वक्त पहुंचा और पहले से आकर के ना मस्जिद में लेट गया। अली अजान की आदत थी कि वो अंधेर में जब फजर का टाइम शुरू होता था वो निकलते थे, लोगों को जो है वो आवाज दे दे करके नमाज के लिए उठाते भी थे और जो है फिर मस्जिद में जाकर के फिर वहां पे इमामत वगैरह का इंतजाम करते थे। तो वो मस्जिद में पहुंचे तो उन्होंने जो है वो इब्ने मलजम को देखा, ये तो लेटा सो रहा है, तो उन्होंने इब्ने मलजम को उठाया, भाई नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो, तो ये उड़ तो गया। फिर जब लोग आ गए, जमात खड़ी हो गई, अली अजान नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक्त इस बदबख्त ने जो है वो खंजर लेकर के उस जो खंजर जहर में डूबा हुआ खंजर था, ठीक है ना, ताकि खंजर के वार से अगर बंदा ना मरे तो जहर की वजह से मरे, इस तरह से वो करते थे। तो वो जहर में बुझाया हुआ खंजर जो है वो उससे नमाज के दौरान ही अली अजान के ऊपर हमला किया, अली अजान जो है वो शदीद जख्मी, सर के ऊपर हाथ में उसने हमला किया, शदीद जख्मी हुए और ये हालत हो गई कि उनके बचने की कोई आसान नहीं रह गए। तो उन्होंने उस हसन हुसैन रतन को बुलाया, उनको नसीहतें करनी शुरू कर दी और फिर आखिर इसी जख्म की शिद्दत की वजह से उनका 20 रमजान मुबारक को शहादत हो, ठीक है। तो 17 रमजान मुबारक को अटैक हुआ और 20 रमजान मुबारक को अली रतन की शहादत हो गई। मुआविया रजान के साथ ये मामला हुआ कि वो जो बंदा था नजार, तो उसने जो अटैक करने की कोशिश करी ना तो मुआविया रजान जो है वो बच गए, उसका वार पड़ा ही नहीं उनकी ओर, लगा ही नहीं ना, तो वो बच गए। फिर जाहिर साथ उनके जो है वो मुआफिजीन होंगे, कुछ दोस्त वोस्त होंगे, उन्होंने उसको पकड़ लिया किया उसके साथ, मुआविया ने इस तरह से बच गए। और अमर इब्न आस के साथ किताब में लिखा हुआ है कि उनके साथ ये हुआ कि अमर अतान जो है ना वो किसी वजह से उस दिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंच ही नहीं सके, ठीक, कोई बीमारी हो गई, कोई मजबूरी हो, उन्होंने किसी और बताया भाई तुम जाकर के आज की नमाज पढ़ा दो। तो वो दूसरा बंदा तो गया ना, उसके लिए मौत इंतजार कर रही थी, उसको इस बंदे ने अमर इब्न आस समझ करके कि भाई इमामत के लिए तो अमर इब्न आस आते हैं, तो भाई जो इमामत करा रहे हैं तो वही हो गए अमर इब्न आस, उसने उनको शहीद कर दिया, इस बंदे को शहीद कर दिया, ठीक है। तो अमर इब्न आस भी बच गए, मौलवी अतान भी बच गए, लेकिन अली अतान के लिए अल्लाह तआला ने फैसला किया हुआ था वो शहीद हो गए। इस तरह से अली अतान का जो बाप था, इतना बड़ा इल्म का, तकवे का, शुजाअत का, नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का है, उस वक्त वफादारी करी थी जब पूरे खानदान ने नबी अलैहिस्सलाम को अबैंडन कर दिया। घर में तो खदीजतुल कुबरा अल्लाह ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाहर तो किसी ने भी सपोर्ट, खानदान वालों को बुलाया था ना वो सफा की पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, और उनसे कहा था कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वैसे दुश्मन की फौज हमला कर रही है तो तुम मेरी बात मानो, हाँ भी आप तो सादिक हैं, आप तो अमीर हैं, हम आपकी बात मानेंगे, तो मान लो मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब होना है, अलग से कोई जो है मामूल नहीं है। और तो अबू लहब ने तो देखा या मोहम्मद कमाल ना उस बिल्ला, हाथ टूट जाए वो, इस वजह से तुमने हमें यहाँ बुलाया, ठीक है। तो सारे वापस चले गए, अली रजा उन्होंने की बात मानी और उनका जो है साथ दिया, पहले मुसलमान इस्लाम लाने वाले बच्चे अली अतान बने बाद में दूसरे को। अली अतान के फजाइल पहले भी हम काफी सारे पढ़ चुके हैं, चंद एक और बातें कि भाई ये 886 886 हदीस के रावी भी हैं और कुरान मजीद के कौन से वाले उलूम के ये एक्सपर्ट हैं? कुरान मजीद के कौन से फिकही उलूम, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में? ठीक है, फिकही उलूम तो हो गया ना कि भाई आपने उसमें से शरी हुक्म कौन सा अखज किया, उसके भी ये बहुत बड़े थे। और दूसरी चीज थी फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी ये आयत कब नाजिल हुई, ये आयत कहाँ नाजिल हुई, ये आयत क्यों नाजिल हुई, शानी नजूल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी ये सबसे बड़े जो है वो एक्सपर्ट थे, आलिम थे। तो अल्लाह ताला ने उनको इतना ज्यादा इल्म अता फरमाया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अली रज़ा तआला की भी शदीद मोहब्बत अता फरमाए, जैसे तमाम सहाबा किराम की शदीद मोहब्बत अता फरमाए। ये अहले बैत में से 100% थे। शिया तो कहते हैं ना यही अहले बैत थे, हम कहते हैं नहीं यही अहले बैत नहीं थे, लेकिन 100% अहले बैत में से अली रज़ा तो थे ही थे। ठीक है, अहले बैत की मोहब्बत में अली रज़वान की मोहब्बत भी शामिल है, और हमें अली रज़वान के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक मिला। ठीक है ना, ये नहीं कि अली रज़वान से मोहब्बत जो है वो दूसरे सहाबा की अदावत की वजह से कर रहे हैं, जैसे कि शिया और वापस करते हैं। ठीक है ना, बल्कि अली रज़वान से मोहब्बत जो है वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के नबी रसूल खातिर, और अली रज़वान की सिफात की वजह से उनसे मोहब्बत करने की अदावत में तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अल्लाह की तौफीक से हम फिर अशरा मुबशरा में से किसी सहाबी के तस्करा शुरू करेंगे। दिन में तो यही है, जो जैसे कि हमारे हजरत ने भी तरतीब रखी है कि अली रज़वान के बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु इनका तस्करा रखा है। तो इंशाल्लाह इस टाइम शुरू करेंगे इनका तस्करा, कुछ पकड़ लिया अभी जुदा जुदा के तहत। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।